ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदा।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। सुनाई दे रहा है पीछे तक? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो कर्म योग की व्याख्या, तीसरा अध्याय, और भगवान इंद्रियों में जो युक्त है, या इंद्रिय रामो जिसको भगवान ने कहा, और उसके ठीक विपरीत आत्माराम, इसकी व्याख्या की। और फिर भगवान ने देखा कि अर्जुन जो हैं वो अब आत्माराम के विषय में कुछ और अधिक जानकारी चाहते हैं। तब फिर भगवान अब आत्माराम के लक्षण बताना शुरू किए। तो हमने पिछले श्लोक में आत्माराम के तीन लक्षण जो भगवान ने बताए उसकी चर्चा की, कि किस प्रकार से जो तीन स्वार्थ हैं किसी भी कर्म में करने के लिए, इन तीन प्रकार के स्वार्थ को एक आत्माराम उसका परित्याग करता है। तो पहला स्वार्थ कौन सा है? उसका किसी कर्म को करने में कोई स्वार्थ नहीं होता, उसका किसी कर्म को न करने में भी कोई स्वार्थ नहीं होता, और उसका समस्त प्राणियों के प्रति भी कोई स्वार्थ नहीं होता। तो इसके पश्चात हमने पिछले बार चर्चा की थी कि निस्वार्थ भाव जो है, या सेल्फलेसनेस, लीड्स टू ट्रस्टवर्दीनेस विच लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर सपोज टू बी responsible species as against the other species। और इसके ठीक विपरीत जब कोई स्वार्थी बन जाता है, one who is selfish, selfishness leads to distrust, leads to always one keeps doubting about that person। और दो प्रकार के कर्म जिनकी चर्चा पिछली बार हमने की, स्वार्थ कर्म और कृष्णार्थ कर्म, स्वार्थ और परमार्थ। तो अब इसके पश्चात आज के श्लोक में भगवान और आगे व्याख्या कर रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं इसी आत्माराम व्यक्ति के। तस्मात् सक्त सततम् कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात, इस शब्द से भगवान आज का श्लोक प्रारंभ किए हैं। तस्मात का अर्थ होता है इसलिए। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान एक ही सांस में मानो कि ये दोनों श्लोक बोले। As if Lord Krishna spoke this verse and the previous verse in just one breath। तो जो पिछला श्लोक और उसके पश्चात फिर भगवान ने जब कहा इसलिए हे अर्जुन, क्या इसलिए हे अर्जुन? असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, जो सतत रूप से, सतत का अर्थ है सदैव, नित्य रूप से, जो कि कार्यम कर्म, कार्यम कर्म का अर्थ है कर्तव्य कर्म, ड्यूटीफुल वर्क अंग्रेजी में यदि कहें तो, जो नित्य रूप से अपना कर्तव्य कर्म करता रहता है, किस प्रकार से? अनासक्त भाव में, विदाउट अटैचमेंट, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कर्म में लगा है क्या प्राप्त होता है उसे? परम आपनोति पुरुष, कि उसे साक्षात परम सत्य प्राप्त, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही प्राप्त होते हैं। तो इसका पूरा अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार से है, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कुछ विशेष अंतर तो नहीं पिछले श्लोक और इस श्लोक में। जब हम हमारे दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि वही उपदेश रिपीट किया जा रहा है, लगता है रेपिटेटिव लगता है। परंतु हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, जैसे बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि, वो हरेक श्लोक के पीछे, जिसको हम कहते हैं हर समय कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग, और भगवान के हृदय में भगवान किस आशय को लेकर वो श्लोक कहे हैं, ये भगवान, ये वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो अब आज के श्लोक में भगवान कर्म और कर्म फल के विषय में कहे हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति आम के पौधे पर पानी डाल रहा है। तो जब कोई आम का पौधा लगाता है और उसके पश्चात आम के पौधे पर पानी डालता है, तो उसके सामने उसे क्या दिख रहा है? सामने, उसकी आंखों के सामने उसको क्या दिख रहा है? जैसे यहां पर आप देखो, ये व्यक्ति जो पानी डाल रहा है, इसको सामने केवल वो पौधा दिख रहा है, उसके जो चर्म चक्षु हैं, ये फ्लेशी आइज, ये जो मटीरियल आइज, ये केवल क्या देख रहे हैं? एक पौधे को देख रहे हैं, और पौधे में वो क्या देख रहा है? केवल पत्ते और टहनियां, और हो सकता है कि उस पौधे का जड़। परंतु यदि मैं पूछूं कि उसके साथ साथ उसकी मन की आंखों में या अपेक्षित आंखों में, अपेक्षित आंखें समझते हैं, अपेक्षित आंखों से वो क्या देख रहा है पानी डालते समय? ये जो बगल वाला चित्र, ये उसे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यदि ये दिखाई न दे तो वो कभी इतना परिश्रम नहीं करेगा उसमें पानी डालने का, उसमें खत डालने का, जो भी कुछ। तो यहां पर जब हम किसी भी कर्म की चर्चा करते हैं, चाहे एक साधारण से साधारण सा कर्म हो, जैसे कि किसी पौधे पर पानी डालता, उसके पीछे भी हरेक मनुष्य पहले फल को देखता है, उसकी अपेक्षा में वो कर्म कर रहा है। तो अब भगवान आज के श्लोक में जो बोल रहे हैं, भाई ये सिद्धांत तो हजम होना बहुत मुश्किल है। तो ये तो तीसरा ही अध्याय चल रहा है और भगवान ने ऐसे सिद्धांत बताना शुरू कर दिया कि जो हजम होना मुश्किल हो रहा है। अब आगे इतने सारे अध्याय बाकी हैं और भगवान प्रोग्रेसिव नॉलेज देने वाले हैं, तो भाई कैसे समझे हम? तो हाँ, ये भगवान इसको नाकार नहीं रहे, ये बात ध्यान में रखना। भगवान कर्म और कर्म फल के ऊपर किसी व्यक्ति के ध्यान को नाकार नहीं रहे। तो आज जो भी हम चर्चा करेंगे इस विषय के ऊपर, तो आप भी ध्यान में रखिए कि वी आर नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट एवरी एक्टिविटी इज एक्चुअली टिंज्ड विथ द रिजल्ट और द फ्रूटिव रिजल्ट। ये जो इंग्लिश का वर्ड है फ्रूटिव, फ्रूट का अर्थ क्या है? फल। So, no activity can be performed unless the result is first known and seen. So please don't think Krishna is denying that fact or that truth. Nahin. Ab aaj ke shlok mein Bhagwan ne karm aur karm phal ki jo abhi humne charcha ki, ek spontaneous human psychology jo hoti hai ya kisi bhi jeev ki psychology hoti hai, तो हो सकता है कि हमें लग रहा हो कि भगवान ठीक विपरीत तीन प्रस्ताव रख रहे हैं आज के श्लोक, और वो भी बहुत कठिन प्रस्ताव रख रहे हैं हमारे सामने अर्जुन के द्वारा. तीन कठिन प्रस्ताव है. एक तो नियत कर्म करना, सबसे पहले वही कठिन हो जाता है. अपना नियत कर्म करना हमारे लिए सबसे पहले वो मुश्किल कठिन हो जाता है. अब भगवान कह रहे हैं न केवल नियत कर्म करते रहो, परंतु वो नियत कर्म कौन सी भावना में करते रहो. भाई अब तो अनासक्त भाव में अपना नियत कर्म करते रहो. और केवल इतना ही नहीं, भगवान फिर एक और हार्ट अटैक दिए. तीसरा प्रस्ताव जो भगवान ने रखा, देखिए भगवान इतने बुद्धिमान हैं कि भगवान आगे की सोचते हुए कि यदि मैं एक प्रस्ताव रखूंगा तो तुरंत कलयुगी जो जीव है वो एक प्रश्न सामने खड़ा कर देगा, या कोई एक्सक्यूज सामने खड़ा कर देगा, या कोई जस्टिफिकेशन कर देगा, उसका इंटरप्रिटेशन कर देगा. तो भगवान ने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना, ही हैज केप्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड. तो अनासक्त भाव से, तो कोई व्यक्ति को यदि ये कहा जाए कि नियत कर्म करो, तो तुरंत उसके मन में, भाई नियत कर्म करने का मुझे फल क्या मिलेगा, तुरंत भगवान में चुप रहो अनासक्त भाव से. अनासक्त भाव से तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर लूंगा. नहीं, सततम. तो सब जगह से चारों कोने चित्त कर रहे हैं भगवान, चेकमेट जिसको बोलते हैं. तो ये जो तीन कठिन प्रस्ताव आज के श्लोक के द्वारा भगवान बता रहे हैं, नियत कर्म अनासक्त भाव से, तस्याम कार्यम सततम, सदैव, कि ऐसा नहीं कि किसी टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार, नहीं, भगवान बोल रहे हैं सततम होना चाहिए. मतलब सततम भाव भी ये होना चाहिए और सततम नियत कर्म भी होते रहने चाहिए, दोनों सततम है. अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इस फोटो को. कई बार मुझे भी ऐसे दिखाई देता है यहां से. तो अब जैसे ऊपर यहां पर लिखा गया है कि भगवान जब ये कह रहे हैं कि हमको कर्तव्य कर्म करना है कि नहीं. अब ये नियत कर्म अनासक्त भाव से सततम, मतलब कर्तव्य कर्म करना है ना, ड्यूटीफुल वर्क जिसको बोले, ड्यूटी बाउंड वर्क. तो चैलेंजेस या चुनौतियां क्या आती है. अब जब ये ड्यूटी या कर्तव्य वर्ड आ जाता है, जैसे कि मानो कोई हमको कहे कि भाई एक ग्लास पानी लेकर आओ. अब पानी लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई कहे ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुरंत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाए, भैया ये क्या बोल रहे, ड्यूटी क्या, पानी लेके आऊंगा, ये ड्यूटी व्यूटी मत लगाओ कुछ. तो तुरंत जो ड्यूटी वर्ड आ जाता है तो रेजिस्टेंस हमारे अंदर है कि नहीं, ड्यूटी से कतराते हैं. तो क्यों, ये हम स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से कर्तव्य से इतना कतराते क्यों है. क्या आप लोग का अनुभव क्या है, आप लोग बहुत से लोग ड्यूटी में होंगे, तो क्यों हम लोग कर्तव्य से कतराते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, एक तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, कमिटमेंट देना पड़ता है, हाँ नम्र बनना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नम्र बनना पड़ता है। ड्यूटी मतलब किसी की कर रहे हैं ना ड्यूटी। हाँ एक और अच्छा पॉइंट, बोरिंग लगता है, अकाउंटेबिलिटी, उसका रिव्यू भी होता है, बहुत अच्छे आपके एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट हैंड रियलाइजेशंस आप लोगों के सुनने मिल रहे हैं, कई लेटेस्ट आ रहे हैं आजकल, रिवाइज होते रहते ना सॉफ्टवेयर, रिवाइज होते रहते वैसे ये भी। हाँ तो ये सब, तो यहां पर अब देखिए, जब भगवान कर्तव्य कर्म के विषय में कह रहे हैं तो तुरंत ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो ना, बोरियत, फिर बाद में अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, रिपीटेशन, ड्यूटी मतलब वही चीज बार बार, तो इसलिए बोरियत भी होती, वही चीज बार बार करना। तो अब हम यदि देखें कि किसी भी कर्म को करने में कंसिस्टेंसी का स्रोत क्या है, मतलब वही चीज वही कर्म को ड्यूटीफुली करते रहे ना, तो दो चीजें यहां पर जो आप देख रहे हो, एक है जरूरत कि भाई वो जैसे पिछली बार पापी पेट का सवाल है, भाई जरूरत है, मजबूरी बोलते हैं ना, मजबूरी, मजबूरी है, जरूरत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन भी बोलते हैं। तो एक है नेसेसिटी और दूसरा है प्रेम। अब देखो, या तो कोई व्यक्ति नेसेसिटी या जरूरत के वजह से कुछ कर रहा है या प्रेम के वजह से कर रहा है। अब यदि हम देखें कि नेसेसिटी और प्रेम से क्या उत्पन्न होता है, तो जब कोई व्यक्ति केवल अपने मन में ये रखता है कि मुझे जरूरत है ये करना, ये जो भी कुछ करना है, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, तो फिर उसके अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि मैं नहीं करूंगा तो जो मेरी नेसेसिटी है वो पूरी नहीं होगी। सो इट इज इन ड्यूअल वेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ फियर वी गेट इन टू एन एक्शन विच इज नेसेसरी टू बी परफॉर्म्ड, एंड दैट नेसेसरी एक्शन ऑल्सो गिव्स राइज टू फियर, इट बिकम्स द कॉज एंड ऑल्सो द इफेक्ट। थोड़ा टेक्निकल रहेगा, ध्यान दीजिए। और प्रेम जो है, प्रेम में आप देखोगे कि एक एंथुजियाज्म, जब कोई केवल जरूरत के लिए कुछ कर्म कर रहा है तो वो उसको एंथुजियाज्म या उत्साह नहीं बोलेंगे। कोई यदि किसी फैक्ट्री में बहुत जोर से भरकम कार्य कर रहा है तो दूर से आप देखोगे तो कितना उत्साही है, एक मिनट बैठ नहीं रहा है, लगा हुआ है, 5 घंटे से लगा हुआ है, लेकिन उसको उत्साह नहीं बोलेंगे, वो बेचारे की जरूरत है, एक मिनट भी रुक जाएगा तो वहां पर मीटर डाउन हो जाएगा। तो प्रेम जो है, प्रेम उत्पन्न करता है वास्तविक उत्साह को, और जब कोई व्यक्ति उत्साह से कर्म कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम का एलिमेंट उसके अंदर है। तो भगवान अर्जुन को धीरे धीरे ये सारी जो व्याख्याएं दे रहे हैं कर्तव्य कर्म इत्यादि की, भगवान इनके बीच में जिसको कहते हैं ना शुगर कोटेड पिल, उसके बीच में भगवान प्रेम अर्जुन का जागृत करना चाहते हैं। और अंततः अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा वो कर्तव्य भाव में नहीं लड़ा, अंततः किस भाव में लड़ा? प्रेम के भाव में। इसलिए करिष्ये वचनम तव, आप बोल रहे हो और आपके साथ मेरा रिश्ता क्या है? केवल प्रेम का। ये एक प्रिंसिपल सुना होगा आपने, द डैंगलिंग कैरेट प्रिंसिपल, और ये गधे के संदर्भ में। आज मैंने गूगल में इसको टाइप किया तो जितने इमेजेस आए फर्स्ट पेज पे सारे गधों के ही आए। गधे और उसके सामने ये गाजर। तो ये उदाहरण अक्सर शास्त्रों में भी दिया गया है, हमारे प्रचारक भी देते हैं कि गधा जो है वो आसानी से आगे बढ़ता नहीं, हो बहुत वो हटी होता है, जिद्दी होता है, आगे नहीं बढ़ता हो। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए दो चीजें लगे, एक तो पीछे से डंडा, कई बार डंडा भी मार दो बहुत फिर भी वो ऐसा रहता है कि नहीं तुम्हारे डंडे भी काम नहीं करेंगे, तो इसलिए सामने गाजर लटकानी पड़ती, फिर वो दो कदम चलता है, गाजर भी दो कदम आगे जा रही उसको पता नहीं, इसलिए गधा। तो गाजर को लेने के लिए और कदम बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। तो ये क्या प्रवृत्ति है गधे की कि उसके अंदर उस गाजर को प्राप्त करने की कुछ आशा है। तो यहां पर न तो उसके अंदर कोई जरूरत पैदा हो रही है न उस गाजर के प्रति अभी तक प्रेम पैदा हुआ, केवल आशा है, होप, होप अगेंस्ट होप। जैसे अक्सर इस कौन में हम ये गधे का उदाहरण देते हैं, गांव के दो गधे थे, एक गधा शहर में गया, अब वो शहरी गधा हो गया है? और शहर क्यों गया? शहर क्यों जाता है कोई? हायर प्रोस्पेक्ट्स। तो वो शहर गया हायर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो एक बार छुट्टियों में गांव वाला गधा इस शहरी गधे से मिलने गया, भाई बहुत दिन हो गए दोस्त से मिला नहीं, देखते हैं अब हमारा परदेसी गधा कैसा है, सूट बूट में है कि नहीं। तो मिलने गया, देखा कि गधे की तरह परिश्रम कर रहा है, सुबह शाम सुबह शाम, मालिक जो उसका मालिक है उसका काम कर रहा है यहां, और दिन के अंत में उसको थोड़ी सी घास वो दे रहा खाने के लिए। तो ये जो गांव वाला बोलता है, अरे तो गधे का गधा रहा, ये इतना घास तो हम लोग सुबह सुबह खा जाते थे, तेरे को तो शाम को मिल रहा है, और वो भी इतना परिश्रम करने के पश्चात। तो ये कहता है, तुझे क्या पता, तू अनपढ़ गंवार, मेरा हायर प्रोस्पेक्ट से इधर। अच्छा, क्या हायर प्रोस्पेक्ट? बोला, तेरे को मैं एक रहस्य की बात बताता हूं, कोने में आ जा। तो उसको बताता है, पिछले हफ्ते की बात है, ये जो मेरा मालिक है ना, इसकी लड़की को ये डांट रहा था, कोई गलती उसने की होगी, और डांटते डांटते अपनी लड़की को कहा, अगली बार तूने ये गलती की इस गधे से तेरी शादी करूं। तो गधा बोलता है, शहरी गधा, ये साले जो मनुष्य है ना, ये गलती तो करते ही रहते हैं, तो अगली बार जब तू आएगा तो मैं अपना कार्ड वार्ड रेडी रखूंगा तेरे लिए। तो इसे कहते हैं द डैंगलिंग कैरेट प्रिंसिपल। अभी हम लोग हंस रहे होंगे, है कि नहीं, किसके ऊपर? इसके ऊपर। लेकिन प्रिंसिपल एक ही है। यहां पर हम गधों की चर्चा नहीं कर रहे, ध्यान में रखना, हम प्रिंसिपल की चर्चा कर रहे हैं। तो सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं कि सिद्धांत वही है। तो इसलिए ये एक प्रिंसिपल जो बताया गया है। फिर हम देखें आजकल का सिनेरियो क्या है। हाल ही में मुझे एक मेरे मित्र ने भेजा ये कि ये पोयम आपने सुनी होगी, जॉनी जॉनी, ये आजकल का वर्जन है अभी, ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा, जॉब इन कंपनी यस पापा, लॉट ऑफ टेंशन यस पापा, टू मच वर्क यस पापा, फैमिली लाइफ नो पापा, बीपी एंड शुगर हाय पापा, ईयरली बोनस जोक पापा, एनुअल पे लो पापा, पर्सनल लाइफ लॉस्ट पापा, प्रमोशन इंसेंटिव तो यहां पर ये क्या है, ये सब यस पापा नो पापा ये सब क्या है, सब डैंगलिंग कैरेट। और ये जो लटकती हुई गाजर, इसके वजह से जो आजकल लोगों के अंदर इतना तनाव, जिसको कहते हैं ना स्ट्रेस, तनावग्रस्त जीवन, तो अब होता क्या है कि जो हमको नियत कर्म करना चाहिए वो नहीं करते हैं अनासक्त भाव से, इसलिए उसके विपरीत जो हमने किया उसके वजह से हमको और अधिक कर्म करने पड़ते हैं उससे निकलने के लिए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एक टिपिकल एग्जाम्पल देता हूं कि आजकल कैसे स्ट्रेस का लेवल एक एक कर कर बढ़ता रहता है कुछ करने के वजह से। तो एक एग्जाम्पल इमेजिनेशन आपके सामने है कि एक व्यक्ति अकेला गाड़ी ड्राइव कर रहा है और एकदम मजे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्यूल टैंक पूरा है, रोड अच्छा है, मौसम अच्छा है, इसको चलाने भी आती गाड़ी, सब कुछ ठीक है, लाइसेंस भी है, तो अच्छी से गाड़ी चला रहा है। फिर देखता है कि एक साइड में एक महिला खड़ी लिफ्ट मांग रही, तब वो सोचता है रोकूं या ना रोकूं, लेकिन देखता है अरे चलो कोई कंपनी हो जाएगी, वो भी महिला है, कंपनी हो जाएगी, तो रोक लेता है उसको बिठाने के लिए, लेकिन देखता है वो गर्भवती है, तभी थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है उसका, वो गर्भवती है, ठीक है बिठा लेता है। अचानक रास्ते में उसका लेबर पेन चालू हो जाता है, वो चलो चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूं, हॉस्पिटल लेके गया, वहां पर मैटरनिटी वार्ड के बाहर वो बैठा है, डॉक्टर आता है, मुबारक हो आपको लड़का हो डॉक्टर साहब ये मेरा नहीं है, आपका नहीं है, वो तो बोल रही है आपका है। बोले क्या? बोला हाँ, पूछिए उससे। वो बाहर आती है, डॉक्टर साहब यही है बच्चे के बाप। अब देखो स्ट्रेस लेवल कहां से कहां पहुंच गया उसका, बेचारा आराम से गाड़ी चला रहा था। तो उसने अब वो महिला के ऊपर एहसान फरामोश, तेरे ऊपर मैंने एहसान किया, वहां पर अकेली खड़ी थी और ये तूने सिला निभाया, इस प्रकार से। तो डॉक्टर बोलता है एक मिनट यहां पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो क्या आप बोल रहे हैं कि आप नहीं है इसके बच्चे के बाप? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर बोलता ठीक है एक टेस्ट कर लेते हैं आपका। तो उनका डीएनए टेस्ट किया, तो डीएनए टेस्ट किया पता लगा, डॉक्टर आके बोलता है कि ये झूठ बोल रही है, सिद्ध हो गया है आप तो कभी बाप ही नहीं बन सकते। तो ये बोला जान बची लाखों पाए, अब तो प्रूव हो गया कम से कम। तो जैसे ही वो अभी हॉस्पिटल से बाहर निकला, सबसे बड़ा टेंशन उसकी जिंदगी का अब आया कि वो घर में जो 3 बच्चे मुझे पापा बोलते हैं वो किसके। तो ये मुझे पापा से याद आया। तो ये प्रकृति का जो नियम बना हुआ है, एक तो है जब हम स्वेच्छा से जो कुछ करना है नहीं करते, नहीं करना है वो करते हैं, और फिर प्रकृति का नियम जो हमें बांधता है, जिसके कारण एक के बाद एक, एक के बाद एक हम कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। इसलिए भगवान शुरू से बोल रहे हैं कि अनासक्त अनासक्त, इतनी बार बोल रहे हैं कितने श्लोकों में। तो अब कर्म की परिभाषा पिछली बार हमने समझी, क्या अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे चेष्टिता इति कर्म, कि ये कर्म की परिभाषा है कि अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम जो चेष्टा करते हैं उसे कहा गया है कर्म। अब इसके साथ साथ हमारे अंदर आत्मा जो है उसकी परिभाषा हमारे शास्त्रों में क्या दी गई है, आनंद मयो अभ्यासत, द सोल इज प्लेजर सीकिंग। मतलब कि केवल अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए ही व्यक्ति कर्म नहीं करता, विशेष रूप से हम मनुष्य, उसके आगे क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा केवल खाना खाने से पूर्ण नहीं होता या पानी पी लेने से। हमने इसकी चर्चा की थी कि अपूर्णता क्या क्या होती है, शारीरिक स्तर पर होती है, मानसिक स्तर पर होती है, परंतु आत्मा के स्तर पर अपूर्णता आत्मा क्या महसूस करता है, प्रेम। कौन सा प्रेम, शुद्ध प्रेम। आत्मा के स्तर पर वो उसकी अपूर्णता है। तो यदि कर्म की परिभाषा हम आत्मा के स्तर पर समझें, अपूर्णस्य निज पूर्तार्थे, तो आत्मा की अपूर्णता है कृष्ण प्रेम, और उसको पूरा करने के लिए जब कोई चेष्टा करेगा तो वो है जो भगवान बता रहे हैं, ये अनासक्त कर्म या योगस्थ कुरु कर्माणि। यदि आपको याद है दूसरे अध्याय में ये श्लोक भगवान ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे अर्जुन हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति रहित अपना कर्म करो, और वो कर्म कैसा कर्म होगा, योग योग में स्थित, योगस्थ, वो कर्म योग में अर्थात भगवान से वो कनेक्ट करेगा तुमको। तो अब यदि हम ये कहें कि शारीरिक स्तर पर हम कुछ कर्म कर रहे हैं, अपूर्णताओं को पूर्ण कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, यहां वहां बहुत सारे कर्म कर रहे हैं, मकान बनाना सब कुछ, हम रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, लेकिन आत्मा जो है वो हमको प्रेरित कर रही, बार बार हमको संकेत दे रही कि भाई मेरी भी पूर्ति करो, और वो क्या है, कृष्ण प्रेम या आध्यात्मिक जो अपूर्णता हुई है उसको पूर्ण करो। तो इसलिए जब हम कर्म की परिभाषा समझ रहे हैं तो भगवान यहां पर इसलिए बोल रहे हैं आज के श्लोक में, कार्यम कर्म समाचर। केवल भगवान ने कार्यम कर्म नहीं कहा, कार्यम कर्म यदि भगवान कहते तो उसका अर्थ क्या होता, बस कर्तव्य कर्म करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन भगवान ने यदि यह कहा है कि अर्जुन कार्यम कर्म समाचर, तो आप लोगों के मन में प्रश्न है भाई ये समाचर का अर्थ क्या है, ये समाचार नहीं है, समाचर। तो ये इसका विभाजन हुआ है, सम्यक आचरण, सम्यक संस्कृत का ये शब्द है जिसका अर्थ है कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण। तो भगवान अर्जुन को बोले, मानो अर्जुन या हम लोग ये प्रश्न पूछें कि भाई यदि भगवान आप कर्तव्य कर्म के विषय में बता रहे हो तो मैं तो वैसे भी कर रहा हूं अपना, तो इससे आगे क्या, कौन सी विशेष बात आपने बताई, नहीं 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 नहीं, क्या तुम वो कर्तव्य कर्म समाचर रूप में कर रहे हो, कंप्लीटली उसका आचरण करते हुए। और कंप्लीटली का अर्थ है कि पिछले जो स्लाइड हमने ली कि आत्मा को संतुष्ट कर रहे हो क्या उस कर्म के द्वारा, तब वो कंप्लीट कर्म होगा, नहीं तो केवल कर्तव्य कर्म रह जाएगा, मतलब केवल शारीरिक अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए जो भागम दौड़ लगी रहती बस वही रह जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सम्यक रूप से आचरण करो हे अर्जुन, और हम सबको कह रहे हैं। अब प्रभुपाद ने उदाहरण दिया इसी श्लोक के ऊपर, प्रवचन लॉस एंजलिस में प्रभुपाद दे रहे थे, तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया बैंक कैशियर का कि अब देखिए बैंक कैशियर जो है वो एक अपना ड्यूटीफुल कर्म करता रहता है दिन रात, लेकिन उसके अंदर प्रभुपाद जो उसका लेसन लिए और सिखा रहे थे कि वो एक प्रकार से अनासक्त भाव से चाहे कितने भी पैसे आए जाए अनासक्त भाव से करता है वो, हाँ बाहरी रूप से है लेकिन अनासक्त भाव से करता है कि नहीं करता। अब मान लीजिए कि आप बैंक में गए 50,000 रुपया आप डिपॉजिट करना चाहते, तो उधर कैशियर के काउंटर पर गए आप और आपका नंबर आया आपने 50,000 रुपए, और जैसे उसने 50,000 रुपए आपके लिए उसने फोन लगाया, अच्छा वो अपने ईएमआई भरना है ना 50,000, अच्छा ठीक है उसको बोल देना मैं आज शाम को दे दूं, आपको कैसा लगेगा? मतलब क्या मतलब है आपका? बस अभी आ गए 50,000 मेरा वो भरना था ड्यू वगैरह सब, और भी कुछ डिपॉजिट करना है, तुरंत आपको मन में क्या होगा भैया? डाउट पैदा हो जाएगा। तो जब आप चाहे उधर 50,000 1,00,000 10,00,000 डाल रहे हो, आपके मन में एक प्रकार की निश्चिंता है कि भैया ये काउंट करके ये कहां डालेगा, जो बड़ा पॉकेट है मेरा बैंक के अंदर, एक पॉकेट यहां पर है छोटा, एक बड़ा पॉकेट बैंक के अंदर है, वहां डालेगा ना, मेरे पॉकेट में डालने। और ये नहीं कि आप विड्रॉ करने जाओगे तो वहां पे रो रहा है बैंक कैशियर फोन करके, आज तो पार्टी नहीं होगी यार, आज तो बहुत पैसे दिए, बस कैंसिल करना आज की पार्टी ताज की, नहीं अनासक्त। तो प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया कि चाहे कितने भी पैसे डिपॉजिट हो, चाहे कितने भी पैसे वहां से विड्रॉ किए जाए, वो व्यक्ति अनासक्त होकर वो कर रहा है, उसको पता है कि महीने के अंत में उसको पगार मिलने वाली है, वो उसकी आसक्ति है, लेकिन प्रभुपाद ने यहां पर केवल ये एस्पेक्ट इस एग्जाम्पल का लिया। अब एक और एग्जाम्पल यदि हम लें, कौन है ये महाशय? वेटर है ना। अब वेटर की परिभाषा, वेटर अभी होटल में आप जाओ आजकल तो ऑर्डर देने से पहले ये वेटर है, ऑर्डर देने के बाद आप वेटर बन जाते। वेटर मतलब क्या है? जो वेट कर, फिर आधे घंटे तक दिखाई नहीं देते किधर गया, फिर तीसरा कोई आता, अरे भाई वो कहां गया ऑर्डर लेके गया, अच्छा वो दाढ़ी वाला, बोले भाई ऑर्डर लेते समय तो दाढ़ी नहीं थी, पता नहीं इतना टाइम हो गया कि दाढ़ी भी उग गई उसकी। तो होटल के अंदर रेस्टोरेंट के अंदर ये जो वेटर होता है, इसका भी उदाहरण उसी प्रकार का है कि चाहे कोई ना एक चाय ऑर्डर कर रहा है या चाहे कोई पूरी थाली ऑर्डर कर रहा है, वो वही स्माइल देके चाय भी देता है, वही स्माइल देके वो थाली भी देता है। ऐसा नहीं कि खाली चाय ऑर्डर किया, क्या चाय के लिए दिमाग टाइम खोटा कर रहा है, घर पे पी लें जाके। नहीं, वो एकदम चाव साफ चाय मंगाई आपने, वाह आपको चाय पिलाएंगे, और अच्छा वो थाली भाई, पिछली बार हमने डेजू का एग्जांपल दिया था, तो वो चाहे कोई भी कुछ ऑर्डर करता है वो अनासक्त भाव से उसको खिला रहा है, आ रहे लोग जा रहे हैं कैसे भी आ रहे, खिला रहा पिला रहा है। घर का मामला अलग होता है, पिछले महीने में गया मेरे पुराने एयरफोर्स के मित्र से मिला, मैं पूछा कैसे आपकी दिनचर्या आजकल, आपका एक टिपिकल डे बताओ, तो उसने कहा, बताओ एक टिपिकल डे पूरा उसने अपना शुरू से बताया। फिर बोला कि हर शाम को एक पारंपरिक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझको। मैंने कहा अच्छा पारंपरिक क्वेश्चन क्या होता है? मतलब पारंपरिक क्वेश्चन ये होता है कि घर पे आता हूं तो बीवी पूछती है कौन सी सब्जी बनाऊं आज शाम को। तो उसने कहा कि अब देखो ये जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसने पहले से मेनू सेट कर लिया शाम का, लेकिन पारंपरिक क्वेश्चन है इसलिए पूछना पड़ता है। तो मैं कहूं चलो यार गोभी बना दो, कल तो बनाई थी गोभी, अच्छा तो भिंडी बना दो, अरे अपने चिंटू को भिंडी नहीं अच्छी लगती, ठीक है भाई दूधी बना दो, क्या बीमार वाले खाने खाते, अरे मेरी माँ बना तेरे को जो बनाना है बना, पूछा क्यों मेरे को। तो बोल रहा था कि घोड़ी पे मैं बैठा था एक दिन, उसके बाद में मेरी औकात इतनी भी नहीं है कि मन पसंद की सब्जी खा सकूं। तो वहां का सीन अलग रहता है, लेकिन अब रेस्टोरेंट में आप जो भी ऑर्डर करते हैं वो एकदम अनासक्त भाव से बना कर लेकर आता है। एक तो वो वेटर्स का अनासक्त भाव इसलिए रहता है क्योंकि उसको मालूम रहता है बना कैसे, इसलिए एकदम अनासक्त भाव से खाई खाई और खाई। अंदर कुक ने पूरा खून पसीना डाल के बनाया है। तो जब ये बोला ना खून पसीना डाल के बनाए तो समझ जा कि वास्तविक रूप में क्या डाल के बनाए। तो अनासक्त भाव से वो उसको करना पड़ रहा है। फिर एक और उदाहरण है ड्रामा का। आप देखिए ड्रामा के जो कलाकार होते हैं तो उनको जो अभिनय करना पड़ता है वो अभिनय बताता कौन है? वो निर्देशक, डायरेक्टर। वो निर्देशक और डायरेक्टर बताता है कि इतने कदम चलना है, और फिर जो भी वो हीरो होगा या नायक होगा उसको बोलेगा दो कदम चलना है और इसको पांच घूंसे मारना है। तो पूरा वो काउंट करके बताया था, एक घूंसा यहां से, एक घूंसा यहां से, पांच घूंसे मारना। अब अगर वो जो हीरो है उसका कुछ बकाया बाकी है उसके साथ, हाँ, कुछ लोन वोन ले रखा है उतारना है उसको, स्टेज पे उतारते हैं तो डायरेक्टर ने बोला है पांच घूसे मारना, वो उसको लगाया जा रहा है लगाया जा रहा है, 15 हो गए 20 हो गए, वो नहीं कर सकता। वहां पर उसको ड्यूटी बाउंड है, वो उसको बताया गया इस एंगल में केवल पांच घूसे मारना है, उसमें से एक भी ज्यादा नहीं। और फिर इसके विपरीत उसको अगर कुछ चीज अच्छी न लगे और वो उसको करनी पड़ रही है तो वो भी उसको वहां पे करनी चाहिए क्योंकि वो निर्देशक ने बोला। तो चाहे वो उसके लिए अच्छी हो चाहे बुरी हो व्यक्तिगत रूप से, वो उसका क्राइटेरियन नहीं डिसाइड कर सकता। मुझे याद है बहुत साल पहले हम ब्रह्मचारी राधा गोपीनाथ मंदिर में एक ड्रामा किए थे, लाइफ ऑफ यमुनाचार्य, और इसमें मैं यमुनाचार्य बना था। यमुनाचार्य एक श्री संप्रदाय के राजा हुए। तो उसमें अब हम लोग इतनी प्रैक्टिस किए थे क्योंकि बहुत वो बड़े स्केल पे ड्रामा, इतने पूरा कॉन्ग्रीगेशन 2000 का आके बैठेगा सामने, महाराज रहेंगे, तो इतनी प्रैक्टिस की थी। और फिर उस दिन अब हुआ क्या कि सुबह से शाम तक प्रैक्टिस, किसी को कोई खाना पीना अलाउड नहीं, तो इतनी भूख लगी हुई थी सबको। अब उस ड्रामा में एक सीन था कि यमुनाचार्य का जो कुक है वो यमुनाचार्य के लिए भोजन लेके आता है। अब इतनी भूख लगी हुई थी तो उन्होंने क्या किया कि अब भोजन एक्चुअली राधा गोपीनाथ का संध्या भोग, पूड़ी सब्जी सब कुछ वो प्लेट में डाल के वो लेके आए, ताकि एटलीस्ट कैमरा में एकदम दिखना चाहिए कि रियली कुछ लाए है। लेकिन मेरे को खाली नाटक करना था खाने का। अब हुआ क्या कि वो ला के रख दिया, वो देखने के बाद तो और भूख लग गई। देखने के बाद उसको इतनी भूख मेरे को लगी तो मैं तो पूरा अच्छी से बैठ के खाना शुरू कर दिया, और वो बेचारा रुका है नेक्स्ट डायलॉग बोलने के लिए, देख रही तो खाना शुरू कर दिया। और क्या था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि पूरे ड्रामा के बाद सब लोग आके बोले कि वो जो सीन था ना वो खाने का वो एकदम रियल लग रहा था। मैंने कहा हाँ सही में रियली खा रहा था मैं। एक ड्रामा का एग्जाम्पल यदि हम लें तो उसके अंदर एकदम फिक्स्ड रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक प्रकार से वो स्क्रिप्ट लिखा रहता है, हर एक सीक्वेंस वगैरह सब कुछ फिक्स्ड रहता है। तो कह सकते हैं कि जैसे बैंक कैशियर या वेटर, उसी प्रकार से ये जो अभिनेता जो भी होगा वो भी एक अनासक्त भाव से जो कुछ करता है करता है। वो रो रहा है लेकिन वो अंदर से थोड़ी रो रहा है, ग्लिसरीन लगा के रोता है, हंस रहा है, उसको थोड़ी कोई खुशी हो रही है जब हंस भी रहा है। तो दोनों में वो अनासक्त है, ऊपर है। अब जो फेमस श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसका कनेक्शन आज के श्लोक से है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो यहां इस श्लोक में जब भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा तो इसके दो अर्थ भगवान ने हमें बताए थे, यदि आपको याद है, मेमोरी थोड़ी रिवाइज कर देंगे। तो कर्म करने का अधिकार है, भगवान बोल रहे हैं हम सबको कर्म करने का अधिकार है। उसके साथ साथ भगवान ये बोल रहे हैं कि जो अधिकार शब्द है इसका एक और अर्थ क्या है कि कौन से कर्म करने का अधिकार है, अधिकृत कर्म करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया अब तो भगवान ने बोल दिया मुझे अधिकार है मैं अधिकारी बन गया, नहीं। जब भगवान बोल रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते उसका अर्थ है हां कर्म करने का अधिकार हम सबको है, लेकिन अधिकृत, अधिकृत जानते हैं ना, लाइसेंस्ड जिसको बोलते हैं। जैसे ही अधिकार शब्द हमारे कानों में गूंजता है तो तुरंत क्या स्वतंत्रता है कि नहीं, ये शब्द आता है ना कि भाई अब मुझे तो अधिकार मिल गया है तो फ्रीडम है मेरे पास, है ना, अधिकारी हूं मैं, अब फ्रीडम है मेरे पास। लेकिन जब भगवान ने ये कहा कि अधिकार का अर्थ अधिकृत कर्म, तो अधिकृत कर्म का अर्थ है निर्धारित स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है लेकिन कैसी है, निर्धारित। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो ये जो गाय घास चर रही है इतनी सारी, तो उनको स्वतंत्रता है कि घास चरो जहां पर भी जाके चरो, लेकिन फेंसिंग कर दिया कि ये बाउंड्री के अंदर पूरी स्वतंत्रता है। तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से भगवान ने शास्त्रों में हमको बाउंड्री दे दिया है कि हां इस बाउंड्री के अंदर ये मनुष्य कर्म करेंगे तो स्वतंत्रता है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पर आपको स्वतंत्रता है, कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि ये खाओ वो खाओ, आपके ऊपर है आपको क्या खाना है। लेकिन यदि मैं कहूं कि उसके अंदर भी कुछ निर्धारित स्वतंत्रता है कि नहीं आपकी, है कि वो जो मेनू कार्ड में है उसी में से आपको चूज करना है, ये नहीं कि अरे वो मेरी माँ जो हलवा बनाती है वो बना के लेके आओ, नहीं, मेनू कार्ड में जो है वो उसमें से ऑर्डर दो भैया। तो वैसे ही भगवान ने जब कहा कि अधिकार हमें है तो वो अधिकृत कर्म का, और फिर निर्धारित स्वतंत्रता हमको प्राप्त। तो यदि फिर हम ये अधिकृत कर्म को करना प्रारंभ किए करें जो आज के श्लोक में भी भगवान बता रहे हैं, तो एक हम करेंगे स्वेच्छा से या अनिच्छा से। तो जब हम स्वेच्छा से उस अधिकृत कर्म को करें तो वो प्रेम में परिवर्तित हो सकता है, और अनिच्छा से करें तब वो बोझा बना रहेगा हर समय। तो हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि इसके अलावा विकल्प नहीं है हमारे पास। हमारे पास यही है कि क्या हमें हमारे उस अधिकृत कर्म को बोझा समझकर करना है अनिच्छा से, या उसको प्रेम में परिणित करना है स्वेच्छा से करकर। इसलिए भगवान ने जब कहा मा फलेषु कदाचन, कर्म के फल पर कोई अधिकार मत रखो। क्यों? कोई भगवान इसमें अपना स्वार्थ नहीं निकाल रहे, भगवान हमारे विषय में सोच रहे हैं कि यदि तुम कर्म को फल को सामने रखते हुए ही केवल कर्म करते रहोगे तो हर समय पछताओगे। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम क्या है कि कभी वो आम मीठा निकलेगा, कभी वो आम खट्टा निकलेगा, है कि नहीं? बाहर से सारे आम एक जैसे दिखते होंगे, लेकिन कभी आप खा के देखो, कभी कोई मीठा निकलता है, कभी कोई खट्टा निकलता है। इसलिए अब इस श्लोक का भी कनेक्शन, जो हमने दूसरे अध्याय का श्लोक लिया और आज का जो श्लोक हम लिए हैं, कि भगवान जो इतना कर्म के विषय में बोल रहे हैं, तो ये है गीता महात्म्य का एक श्लोक जिसके अंदर गीता का गुणगान हुआ है, और इसमें कहा गया है कि जो वास्तविक कर्म है वो है क्या, मतलब कर्म का सिनोनिम क्या है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, कि एक शास्त्र हम सबके लिए क्या दिया है कि देवकी पुत्र ने जो गीत गाया अर्थात भगवत गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, यदि एक देव है जिनको हमें शरणागत होना है तो कौन है, वापस देवकी पुत्र। एको मंत्रस्थ मंत्रस्तस्य नामानि यानी, यदि एक मंत्र हमको जप करना है तो कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये जो लास्ट लाइन है इसमें बताया गया है कि यदि एक एक चीज बताई गई है, एकदम कैटेगोरिकली बताया है कि किसकी पूजा होनी चाहिए, कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, अब कौन सा कर्म करना चाहिए, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये जो लास्ट वर्ड है इस श्लोक का, वो बता रहा है कि ये सारे जो कर्तव्य कर्म अनासक्त भाव से किए गए सतत कर्म है क्या, सेवा। क्या है? सेवा है। इसलिए फिर से यदि हम लें मा फलेषु कदाचन, तो मा फलेषु कदाचन का अर्थ है कि केवल कर्म अनासक्त भाव से या बिना फल की इच्छा से नहीं, हमें क्या करना है, सेवा करनी है, और सेवा का अर्थ है स्वामी की संतुष्टि। क्योंकि सेवक की परिभाषा है जो अपने स्वामी को संतुष्ट करे। कर्म की परिभाषा केवल क्या होगी हर समय, फल की इच्छा, फल की इच्छा। तो अभी पिछले श्लोक से हमें समझ में आ गया कि कर्म सेवा है सही मायने में, और सेवा मतलब स्वामी की संतुष्टि, और स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जैसे कि हनुमान जी का उदाहरण है, हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने मुद्रिका देकर भेजा लंका। तो एक प्रकार से हनुमान जी ने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हनुमान जी केवल जैसे कोई सरकारी नौकर होता है, उसको भेजा जाता है ना आउटस्टेशन किसी काम के लिए, क्या वैसे हनुमान जी गए, नहीं, हनुमान जी वैसे नहीं गए थे। इसलिए कैसे पता लगता है कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए केवल कर्म नहीं किया कर्तव्य, बल्कि सेवा की। रास्ते में मैनाक पर्वत, मैनाक पर्वत ने सुविधा हनुमान जी के सामने की थोड़ा आराम कर लो, यहां पर बैठो, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके जाओ, नहीं, वहां पर प्रभावित नहीं हुए। जितने सारे और अड़चने, सुरसा, सिंही का, ये सारे सब आए, इन सब को लांघते हुए हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो हनुमान जी का एक ही उद्देश्य था कि कैसे प्रभु श्री राम को मैं संतुष्ट करूं जो उन्होंने मेरे ऊपर उत्तरदायित्व दिया है। तो वहां जाने के बाद उन्होंने सीता मैया से मिलने के पश्चात जो भी कुछ समाचार दे दिया प्रभु श्री राम का कि वो आ रहे हैं, आप घबराइए मत, इतना होने के बाद बस इतना ही उनको बोला गया था, लेकिन फिर उन्होंने लंका एक्स्ट्रा किया। क्या किया? लंका को जलाकर एक सैंपल रावण को देकर आए कि ये केवल एक दूत है प्रभु श्री राम का, और देखो क्या तुम्हारी हालत खस्ता करके जा रहा हूं मैं, तो सोचो वो प्रभु श्री राम जब आएंगे, अगले बुधवार को आने वाले हैं दशहरा है, तो वो प्रभु श्री राम जब आएंगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा रावण, समझ जा। तो ये जो एक्स्ट्रा हनुमान जी ने किया, इससे समझ में आता है कि हनुमान जी प्रेम से कर रहे थे, उत्साह से कर रहे थे। नहीं तो सरकारी नौकर क्या करता है, जितना बोला जाए उससे थोड़ा कम। इसलिए केवल हनुमान जी कर्तव्य कर्म में नहीं लगे हुए थे, वो सेवा थी उनकी। ये श्रील प्रभुपाद ने श्लोक भी अपने प्रवचन में कहा, बहुत ही सुंदर श्लोक है छठे स्कंद से, जिसके अंदर आज के श्लोक से संबंधित एक भक्त भगवान के लिए किस भावना में कर्म करता है ये बताया गया है। नारायण परा सर्वे न कुटश्चन अभिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। डिवोटी सोलली एंगेज्ड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड श्री नारायण नेवर फियर एनी कंडीशन ऑफ लाइफ, फॉर देम द हेवनली प्लैनेट्स लिबरेशन एंड द हेलिश प्लैनेट्स आर ऑल द सेम, फॉर सच डिवोटीज आर इंटरेस्टेड ओनली इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। स्वर्ग नरक दोनों उनके लिए वो कोई मायना नहीं रखता है। जैसे गोपियों का उदाहरण है कि गोपियों ने अपने चरण की धूली दे दी नारद मुनि को, जब नारद मुनि ने मांगी ये कहते हुए कि भगवान श्री कृष्ण को सरदर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि आपके चरणों की धूली ही उस सरदर्द को ठीक कर सके। तो गोपियां वो बिल्कुल चिंता नहीं की कि मेरे चरणों की धूली में देने के वजह से मुझे नरक की प्राप्ति हो सकती है और वो भी नित्य काल तक। उन्होंने कहा मंजूर है, यदि 2 मिनट भी हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण का सरदर्द ठीक हो जाए। इसे कहते हैं प्रेम से प्रेरित किए गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म। तो ये भगवान कहना चाहते हैं, और इसलिए आज के श्लोक का निष्कर्ष, एसेंस जिसको हम कहें, वो शबरी के उदाहरण में देखा जाता है आज के श्लोक का, कि शबरी ने जो प्रभु श्री राम को झूठे भेर खिलाए, अब फल है ना वो भी। आज के श्लोक में भगवान भी क्या कह रहे हैं, कर्म और कर्म का फल। तो शबरी एक एक फल को चख कर प्रभु श्री राम को खिला रही, हम जानते कथा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे यह समझ में आ रहा है कि शबरी का भाव अनासक्त भाव है। बाहरी रूप से लग रहा है कि शबरी फल से आसक्त है, परंतु भाव है अनासक्त। तो जो हमने आज के प्रवचन के शुरुआत में बात आप लोगों को कही थी, Krishna is not denying that one should not know the result of one's karma. There is nothing wrong. In fact, one should have knowledge of the result. But one should not get attached to the result. यह है आज के श्लोक का दो लाइन में एसेंस. वन शुड हैव नॉलेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कर्मा बट वन शुड नॉट गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट. एग्जैक्टली शबरी वॉज डूइंग द सेम व्हेन शी वॉज ईटिंग ईच एंड एवरी फ्रूट टेस्टिंग इट. शी वॉज नॉट tasting it to enjoy, she was tasting it to get the knowledge of the fruit, whether it is sweet or whether it is sour. So, jab shabri ber ko kha rahi hai, to keval wo gyan us phal ka le rahi hai ki kya ye bhagwan shri ram ke layak hai ya nahi. To wahi aaj ke shlok ka siddhant hai. Bhagwan bol rahe hain aaj ke shlok mein, तस्मात सक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, कि सम्यक आचरण अर्जुन वही होगा जब तुम प्रेम से बिना आसक्त रहे सतत रूप से अपने कर्तव्य को निभाओगे. और इसका फल तुम्हें क्या प्राप्त होगा, जब अनासक्त रूप से, फल से अनासक्त होते हुए जब तुम ऐसा कर्तव्य कर्म करोगे तो उसका फल क्या प्राप्त होगा, परम आपनोति पुरुष, कि तुम परम पुरुष को जो कि स्वयं साक्षात भगवान है उसे तुम प्राप्त करोगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. तो अब अगले श्लोक में भगवान उदाहरण के द्वारा अर्जुन को और जो जो सिद्धांत इन श्लोकों में भगवान ने बताया, अब उदाहरण के द्वारा इस सिद्धांत को रीइन्फोर्स भगवान कर रहे हैं महाराज जनक का उदाहरण देते हुए. परंतु अगले बुधवार को क्या है,
दशहरा
है. तो क्योंकि हम नासिक धाम में, भगवान श्री राम का पवित्र धाम है ये, तो हम अगले बुधवार को दशहरा मनाएंगे, श्री राम विजय उत्सव. तो आप लोग सब आमंत्रित हैं श्री राम विजय उत्सव में. हमारे गीतामृत के बदले हम प्रभु श्री राम चरितामृत करेंगे, उसकी चर्चा होगी. तो अगले बुधवार को दशहरा होगा, यही हमारा सब सेम टाइम सेम प्लेस सब कुछ बना रहेगा. केवल हम चले जाएंगे द्वापर युग से त्रेता युग में. हरि बोल, हरे कृष्ण.